तुम्हारे बाबा एक मुनफरिद इंसान थे, उन जैसा प्यारा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हम 6 साल एक साथ रहे और मैं कह सकती हूं कि वो 6 साल मेरी जिंदगी के बेहतरीन साल थे। हमारी इस दवाजी जिंदगी का अंजाम अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उन 6 सालों में इतनी खुशियां देखी कि उनके सहारे मैं आज तक जिंदा हूं और तुम्हें दोबारा देख रही हूं। तुम्हारे बाप ने आशिकाना जिंदगी गुजारी और आशिकाना मरा, ये समझने के लिए कि तुम्हारा बाप कैसे जिया, पहले तुम्हें ये बताती हूं कि वो कैसे मरा। जिस रात तुम्हारा बाप गया था,
बता रहे हैं कि जनरल बहुत देर पहले दफ्तर से निकल चुके हैं
और घर में
किसी ने नहीं उठाया। तुम्हें कोई और जगह मालूम है जहां बहराम जा सकता हो?
नहीं, अगर अब्बू को लेने गए होंगे तो वो और सालार भी घर पर नहीं होंगे, और हाँ उनको ढूंढ भी सके तो उनका इरादा बदलना नामुमकिन है।
मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर।
उसी रात मुझे अपने तकिए के नीचे तुम्हारे बाप का आखिरी खत मिला। उसे इतना पढ़ा कि इतने साल बाद भी याद, लिखा था कि प्यारी सुदामा, मेरे जिम्मे एक फर्ज है जिसे निभाना है, मेरे लिए दुआ करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो उन सब मौजों की खातिर जिसे समंदर साहिल पर लाता है, उन तमाम दरियाओं की खातिर जो एक दिन हम दोनों को मिलाएंगे, दोबारा से मिलाएंगे, मेरे लिए
बारिश के इन तमाम कतरों की खातिर जो फरिश्ते जमीन पर लाते हैं,
उन हवाओं की खातिर जो चावल के
पौधे, इन तमाम दिनों की खातिर जो हमने एक साथ गुजारे,
खेतों में लुभाते हैं,
मुस्कुराहटों से भरे उन तमाम लम्हों की खातिर,
दुनिया की तमाम खूबसूरत चीजों की खातिर,
उन तमाम मौजों की खातिर जिन्हें समंदर साहिल बनाता है,
तुम्हारे बच्चों की याद दिलाते हैं,
मेरे लिए रोना नहीं,
मेरे पीछे मत रोना,
उन तमाम दरियाओं की खातिर जो एक दिन हमें दोबारा मिलाएंगे,
बच्चों की खातिर, जिंदगी के तमाम लम्हात की खातिर, میرے لیے مت رونا،
اس خاطر کہ دنیا کی تمام خوبصورت چیزیں
اگر اب بھی مجھ سے پیار،
مجھے تمہاری اور بچوں کی یاد دلاتی ہیں۔
ہمارے عشق کی خاطر میرے لیے مت،
میرے لیے رونا نہیں،
نہ رونا۔ ان کی وصیت پر عمل کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکی۔ وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں کا خیال رکھوں گی لیکن نہیں رکھ سکی۔ جیسا کہ وہ اپنے وعدے پر عمل نہیں کر سکے اور ساری عمر میرے ساتھ نہیں رہ پائے۔ تمہارا باپ بہت بڑا انسان تھا، اس نے دوسروں کی خاطر اپنی جان فدا کر دی۔ جب جنرل کو پتا چلا کہ بہرام کو اس کے اپنے بندوں نے مارا ہے تو پاگل ہونے لگا وہ، پاگل ہونے لگا وہ۔ وہ اس جرم کا قصور کسی اور پر ڈالنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ہم سے انتقام لینے کا، ہم سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنا قصور ہماری گردنوں میں ڈال کر ہم سے انتقام لینا چاہتا تھا۔
मैं एक घर में बच्चे की नर्स हुआ करती थी। मालिक बाहर चले गए और मैं बेरोजगार हो गई। कुछ अरसे के बाद देखा कि मेहताब की हरकत कुछ अजीब हो गई हैं। मुझे यकीन हो गया कि सरसे में जब उस पर मेरा ध्यान नहीं रहा, कुछ हुआ है। यहाँ तक कि मुझे उसके फोन पर आपका नंबर मिला।
अम्मी,
क्या है भाई? हर माँ को अपने बच्चों की फिक्र होती है। उसके पीछे आई और यहाँ पहुंची मैं।
जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए, अब खुशकिस्मती से गलतफहमी दूर हो गई। अब तो आप देख रही हैं ना, महताब यहाँ पे काम कर रही है। इत्तेफाक से अपना काम बहुत अच्छी तरह करती है।
लेकिन फिर उसकी यूनिवर्सिटी का क्या होगा?
आमी, मैं तमाम क्लासों में जाती हूँ, कोई मसला नहीं।
मुझे ताज्जुब है कि तुम अकेली लड़की को कैसे ये काम मिल गया। मैं 2 महीने से काम ढूंढ रही हूँ और तुमने आके।
कंपनी से फोन आया था, आप बाजार गई थी, मैंने नहीं बताया।
मैं तो,
अरे आप बीमार हैं अम्मी जान, इसलिए इसी अरसे में आपके तमाम इंटरव्यूज मैंने दिए।
मैं तो,
बेहतर है आप पुरसुकून रहें, अब तो गलतफहमी दूर हो गई है ना।
उसने मेरा काम चुरा लिया है, मुझे मंजूर नहीं है, मैं खुद यहाँ आके काम करना चाहती हूँ, आ सकती हूँ?
अम्मी अतवरजान, अम्मी को समझ नहीं आ रहा कि क्या कह रही हैं। वो बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा है कि उनको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए।
मैं घर में परेशान होती रहती हूँ।
ऐसी आंटी मेरे साथ मानूस हो गई हैं, मुझे उनसे उंस हो गया है।
तो कोई मसला नहीं है।
क्या मतलब है आपका?
आप दोनों ही यहाँ काम कर सकती हैं, इस तरह से मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे अपनी ड्यूटी के टाइम को आपकी क्लासों के साथ आवांग नहीं करना होगा।
खुदा आपको जजाए खैर दे मैडम।
मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं आतपा,
बस शुक्रिया कहो।
अम्मी,
बहरहाल शुक्रिया। महताब काम के औकात और दूसरी तफसीलात समझा देगी आपको।
शौकत, मेरा नाम शौकत है।
ठीक है, मैं चलती हूँ दरवाजा खोलने।
मुझे भी इजाजत है, अब चलूँ मैं। उठो महताब।
अरे तुम आज रात इतनी थकी हुई क्यों हो यार? मैं तुम्हें मुसलसल फोन मिलाती रही, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया?
सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो ये भी नहीं मालूम मोबाइल कहाँ है।
क्या हो गया आतिफा?
अरे नहीं, कुछ नहीं, आज बहुत मसरूफ दिन गुजरा है, बस यही।
तो अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? अंदाजा लगाओ कि आज मैंने किससे मुलाकात की है।
मुझे हौसला होता तब भी दिमाग काम ना करता गुलचेहरा साहिबा।
मोहम्मद से।
सच में? किस लिए?
ऐसे ही उस कारखाने के बारे में बात करने के लिए मिलने को कहा था।
बहाना ढूंढ रहा था, असल में तुम्हें देखना चाह रहा था, मुझे यकीन है। हाय मोहम्मद, तुम भी क्या चीज हो, क्या चीज हो।
अति, मुझे भी पहले यही लगा था, लेकिन फिर पता चला कि बेचारा तुम्हारे लिए बहुत परेशान है।
मेरा पागल भाई, आखिर वो क्यों वो इतना मेरे लिए परेशान है?
क्या बताऊं, शायद उसी चेक और हक मेहर के मसले के लिए।
अच्छा, उस लिहाज से।
अलबत्ता कारखाने के बारे में भी काफी बात की हम लोग ने। आतिफा, अच्छा बताओ।
देखा, मैंने कहा था ना बहाने की तलाश में था, असल में तुम्हें देखना चाह रहा था। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मुमकिन है उसे यकीन ना आया हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
क्यों?
देखो, अगर उसे कारखाने के बाबत कोई मसला था तो तुम्हारे पास क्यों आया? जाके खुद कलानी के साथ मशवरा करता ना।
कलानी? आतिफा, तुम कलानी को कहां से जानती हो?
कलानी अब्बू के वकील थे ना, पिछले कई सालों से अब्बू के काम अंजाम दे रहे हैं, कारखाने के डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब कुछ जानते हैं।
उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, कलानी हूँ आपका ताबेदार।
इशराक साहब अभी तशरीफ नहीं रखते, आप अपना काम बताइए।
زحمت کے لیے معذرت، میں بعد میں فون کرتا ہوں. معاف کیجیے گا، میرے پاس ان کی ایک امانت ہے.
ہاں جانتی ہوں.
جانتی ہیں
جی؟
تو یہ بھی جانتی ہوں گے کہ ان کے پاس بھی میری ایک امانت ہے.
نہیں، اب نہیں ہے.
میں سمجھا نہیں.
ارے تمہیں ایک دم سے کیا ہو گیا گل چہرہ؟
ہاں کچھ نہیں، بس ذرا بخار سا ہے، میرے خیال میں نزلہ ہونے والا ہے.
اب پتہ چلا، لگتا تمہارے حالات بھی مجھ سے بہتر نہیں ہے. اور ہاں تم نے بتایا نہیں کلانی کو کہاں سے جانتی ہو، البتہ شاید بار کونسل میں دیکھا ہوگا، ہے نا؟
ہاں ایک طرح سے، ہاں شاید.
کیس کی کیا خیر خبر؟ ہائے رات کے وقت کون ہو سکتا ہے، لگتا آج کی رات بہت طولانی ہوگی.
آتی میں بھی آہستہ آہستہ چلتی.
ارے اتنی جلدی جا رہی ہو، میں سمجھی رات کو یہی رہو گی، کیس کے بارے میں بات کریں گے.
ہاں اتفاق سے اسی کام کے لیے آئی تھی، پھر اچانک یاد آ گیا کہ ایک ادھورا کام چھوڑ کر آئی ہوں.
اچھا تو پھر کھانا تو کھا کے جاؤ.
سوری. اچھا بھی جاؤ. ہیلو، السلام علیکم. ٹھیک ہو؟ دیکھو ایک ایمرجنسی ہے، ایک نمبر چاہیے، کیا ڈھونڈ سکتی ہو میرے لیے؟
گلچہر یہاں کیا کر رہی تھی؟
ارے واہ، وعلیکم السلام. چابیاں کیوں نہیں لے گئے تھے؟
دفتر میں بھول آئے ہو. گلچہر ایسی کیوں تھی؟
کیسی تھی؟
جیسے کرنٹ لگاؤ. میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا.
مجھے کیا معلوم، شاید اس نے بھی ایک مصروف دن گزارا ہوگا. تم کسی کے منتظر ہو؟
مجھے نہیں.
اوہ کتنی طولانی رات، تم جاؤ دروازہ کھولو، میں فون اٹھاتی ہوں، تھک گئی ہوں. جی ہیلو ہیلو ہیلو. پتہ نہیں کیا بات ہے.
عاطفہ پولاد واپس آ گئے.
السلام علیکم پولاد، مبارک. مٹھائی کے بغیر کیوں آئے ہو؟ محمد کچھ ہو گیا ہے؟
پولاد اندر نہیں آنا چاہتا تھا، میں نے اصرار کیا. وہ چاہتا ہے
میں میری بہنیں گم ہو گئی ہیں، میری ماں کے پاس نہیں ہے. جن سالوں میں باہر چلا گیا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی. یہ ان کے شناختی کارڈ ہے، آپ میری مدد کریں گی؟
کیوں نہیں، ضرور. پر آپ بیٹھ کیوں نہیں رہے ہیں محمد جان؟ قہوہ تیار ہے اور فروٹ بھی ٹی وی لاؤنج میں رکھا ہوا ہے. آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں؟ معاف کیجیے گا، عجیب رات ہے. ہیلو،
السلام علیکم محترمہ، کیسی ہیں آپ؟ شب بخیر. راکو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟
وعلیکم السلام، فرمائیے آپ کون؟
معاف کیجیے گا، میں نے ٹی وی کمپنی میں فون کیا ہے.
نہیں جناب، رانگ نمبر.
اگر رانگ نمبر ہوتا تو کیوں اٹھاتی ہیں آپ فون؟
خدا یا.
ہلو جی،
السلام علیکم فرجام صاحب، میں رزاقی ہوں، اسپتال سے فون کر رہی ہوں، میڈم عاطفہ کی کلیگ ہوں. معاف کیجیے جو رات گئے فون کیا ہے.
کوئی بات نہیں.
آپ حیران ہو گئے ہوں گے کہ آپ کو کیوں فون کیا ہے. اصل میں ایک مشکل پیش آئی تھی، میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے فون کو جتنا ملایا نہیں ملا، گھر پر بھی ملایا لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا. ابھی دوبارہ ملایا تو انگیج تھا، مجبوراً فائلوں سے آپ کا نمبر ڈھونڈا اور آپ کو فون کیا ہے میں نے.
اچھا عاطفہ گھر میں ہیں، آپ نے کہا کوئی مشکل پیش آئی ہے.
جی مجھے افسوس ہے، اسپتال میں ایک ایمرجنسی ہے.
جی
ہیلو، السلام علیکم کلانی صاحب.
جی فرمائیے.
میں مہرگان ہوں جناب.
مہرگان؟ میں نے نہیں پہچانا، क्या पहचाना चाहिए?
शायद नाम से नहीं, लेकिन क्या मेरी आवाज़ आपको जानी पहचानी नहीं लगती?
मैं क्या अर्ज करूं?
जिस दिन इशराक साहब को फोन किया था आपने,
जिस दिन इशराक साहब को फोन किया था, हाँ जी 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 जी, प्लीज प्लीज फरमाइए, याद आ गया है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, कहिए, जो भी मुझसे होगा मैं करूँगा। ये
मुझे आपसे मिलना है।
घर शास्त्री साहब आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि उनके शौहर की जान आपने बचाई है।
उनकी इनायत है।
चाय नोश फरमाएं।
शुक्रिया, अभी गर्म है। इजाजत हो तो मैं असली बात की तरफ आती हूँ।
जी फरमाइए, मैं सुन रही हूँ।
अलबत्ता ये बात आपके लिए कोई नई नई होगी, बच्चों के गुम होने और उनको यतीम खाने के सुपुर्द करने और उनकी निशानियों के मिट जाने के वाकयात वगैरह, आपने तो इस तरह के वाकयात देखे होंगे ना?
ये कब का वाकया है?
तकरीबन 30 साल पहले का।
अलबत्ता इतनी लंबी मुद्दत की वजह से बाजरा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इन सालों की तमाम फाइलें इकट्ठा की गई हैं और इस वक्त हमारे दफ्तर में। गुमशुदा बच्चियां आपकी क्या हैं?
ये हमारी फैमिली के एक रिश्तेदार का केस है, एक साहब जो कई साल फ्रांस में रहे हैं और हाल ही में ईरान लौटे हैं।
आप जैसा कि जानती हैं, मैंने ऐसे बहुत से वाकयात देखे हैं, अक्सर का नतीजा भी अच्छा निकला है, लेकिन चूंकि हमारा सरोकार इंसानों से है तो बहुत एहतियात करते हैं। इंसानों को अपनी ज़िंदगी की आदत हो जाती है, फिर अचानक कोई आके उनसे कहता है कि तुम वो नहीं हो जो अब तक थी, तुम्हारा बाप कोई और है, माँ कोई और है। इसीलिए हम हमेशा इन अफराद को जो यहाँ से गोद लेने के लिए आते हैं, बच्चों को नसीहत करते हैं कि वही इब्तिदा में बच्चों को हकीकत बता दें, ताकि बाद में कोई बड़ी मुश्किल पेश ना आए। आपके ख्याल में ऐसा नहीं?
जी मैं समझ सकती हूँ।
यकीनन, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप पूरी तरह महसूस करेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की ज़िंदगी एक ख़बर से तबाह हो जाती है। हमारा कल्चर ऐसा है कि एक दूसरे से हम हकीकत छुपाते हैं, फिर किसी दिन कोई अजनबी नहायत बुरे हालात में आपकी ज़िंदगी में दाखिल होकर आपसे सारी हकीकत कह देता है, फिर जानती है क्या सानिया पेश आ सकता है।
अच्छा तो फिर क्या किया जाए? क्या अपने गुमशुदों को भुला दें? ये माजरा इसके उलट भी तो हो सकता है। मुमकिन है कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद अच्छी जिंदगी गुजार सके, उसका मुस्तकबिल बेहतर हो जाए। आप समझ रही हैं ना?
आपके रिश्तेदार की तरह?
जी हाँ, क्यों नहीं।
तो क्या आपको यकीन है कि वो लड़कियां भी खुश हो जाएंगी?
नहीं, यानी मैं नहीं जानती हूँ, वाकई में नहीं जानती।
ऐसे बच्चों की ज़िंदगी कभी कभी एक छोटे से हादसे से बदल जाती है। कई ऐसे जोड़े हैं जो यहाँ से तो बच्चों को ले जाते हैं, लेकिन उनके साथ एक सैंडविच जैसा सलूक करते हैं, यानी एक टुकड़ा काट लेते हैं, पसंद ना आए तो वापस भेज देते हैं। अलबत्त ऐसे ख़ानदान भी हैं जो नहायत मेहरबानी और दिलसोजी के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, लेकिन इस बीच कोई आके अपने गुमशुदा को ढूंढने लगता है और उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फैसला करने से पहले उसके अंजाम के बारे में खूब सोच लें।
जी मैं ज़रूर उनके साथ इस बारे में बात करूँगी। बहरहाल ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं लाई हूँ, तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और वो तकरीबी तारीख जिनमें उनको यतीम खाना लाया गया और कुछ और मालूमात जो आपकी मदद कर सकती हैं। मैं वाकई में नहीं जानती कि वो लड़कियाँ किन हालात में होंगी, लेकिन उनके भाई के लिए उनका ढूँढना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, मैं आपकी फाइल पढ़कर आपको बताऊंगी।
आपका बहुत शुक्रिया।
बहुत खुशामदीद। क्या लेना पसंद करेंगी, चाय, कॉफ़ी? माफ़ कीजिए, जो ये जगह इशराक साहब के रेस्तरां की तरह बहुत शानदार नहीं है, यहाँ पर अपनी खिदमत खुद ही करनी होती है।
कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है।
अच्छा, क्या खैर खबर?
करानी साहब, बेहतर है कि असल बात करने की तरफ आऊँ, क्योंकि मैं भी आपको जानती हूं और आप भी मुझे जानते हैं।
बहुत बेहतर, मैं तो सिर्फ मुकदमा ढूंढ रहा था, लेकिन ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि इधर उधर की बातों के बजाय असल बात करें तो मैं भी असल बात की तरफ आता हूं। आप बताइए कि मुझसे आप क्या चाहती हैं मुझसे?
मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मुझे साफ साफ बताएं कि आप क्या चाहते हैं।
अच्छा, मैं समझा नहीं।
आप इशराक साहब को कितना जानते हैं कलानी साहब?
असल में मुझे शर्म आ रही थी, इस कमरे के साथ मेरी अच्छी यादें वाबस्ता नहीं है। क्या हुआ, मेरी बहनें मिल गई क्या
इतनी जल्दी? नहीं जनाब, आज ही से तो मैंने शुरुआत की है, लेकिन मिल जाएंगी, आप परेशान ना हो।
मेहरबानों की वजह से बुलाया है, मैंने तो कहा कि मुझे उनसे नहीं मिलना है।
मेहरबानों की तबीयत वाकई ठीक नहीं है, कल रात तुम्हारे लिए इतना वो तड़पी है कि आईसीयू के इंचार्ज ने मोहम्मद को मजबूर होकर फोन किया।
मेरे लिए अहम नहीं है, यकीन करो।
तो
तुमको याद है ना वो टाइम जब तुम मिलने नहीं देती थी?
दुनिया इसी का नाम है, दुनिया के काम हमेशा उल्टे हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए प्लीज।
मेरे लिए वाकई मुश्किल है।
आपकी बहनों को ढूंढना भी मेरे लिए कोई आसान नहीं है मर्जबान साहब। जब एक इंसान दूसरों के लिए कोई मुश्किल काम अंजाम देता है तो साबित करता है कि उसको कितनी अहमियत दे रहा है, वरना आसान काम तो सबको करना आता है ना?
जानती हूँ तुम मुझे माफ नहीं कर सकते, मैंने सारी उम्र तुमसे झूठ बोला है, तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं रखती, सिर्फ सिर्फ चाहती हूँ कि तुम ये जान लो कि ये मेरा फैसला नहीं था।
आप इतने सालों खामोश रही,
तुम्हें बताती तो हालात और बदतर हो जाते।
मेरे लिए या आपके या जनरल के लिए?
तुम्हारे ख्याल में मेरे लिए आसान था, मैंने तुम्हें नहीं देखा था। जिस दिन पहली दफा तुम्हारी छोटी बहन,
आगे मत बताइए,
जब वो वाकया हुआ जनरल ने कहा हम तुम सबको साथ नहीं ले जा सकते, सिर्फ सिर्फ तुम्हारे लिए पासपोर्ट का इंतजाम कर सका। तुम्हारी बहनों को मीरकुली के पास छोड़ दिया, उसकी और अतिया की औलाद नहीं थी, सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी बच्चा था। मैं मुतमईन थी कि अतिया अपनी आंखों की तरह उनकी हिफाजत करेगी।
मैं नहीं सुनना चाहता।
लेकिन मेरा ख्याल गलत था। अगर तुम अपने बाप से इतना ना मिलते होते तो तुम्हें भी अपने साथ ना ले जाते। जब उन्होंने तुम्हें देखा।
पुरसुकून रही है मैडम अरसवान?
तो खुद को तो खुद को रोक नहीं सके। इब्तिदा में समझती थी कि बच्चियां भी मीरकुली और अतिया उनके पास है, लेकिन एक दिन जनरल ने कहा कि मैं मजीद उनके बारे में ना पूछता। मैं भी खामोश हो गई। उन तमाम सालों में मैं मुंतजर थी। मेरी वाहिद आरजू यही थी कि ईरान वापस आऊं और इजाला कर सकूं। सोचती थी कि बच्चियां भी मीरखुली के पास हैं, या कम अज कम उनसे वो लोग बाखबर हैं। लेकिन उस दिन मीरकुली ने मुझे पूरी तरह नाउम्मीद कर दिया। भूला बेटा, यकीन करो मैं तुमको अजियत देना नहीं चाहती। अगर नहीं बताया, अगर चुप रही तो जानती हूं कि तुम उसे नफरत करते हो। मुझे भी खुद से भी नफरत होती है। मैं तुमसे उम्मीद नहीं रख सकती कि तुम मुझे माफ कर दो।
आप गलत सोच रही हैं। मैं आपसे नफरत नहीं करता, यानी आपके लिए कोई एहसास ही नहीं है मेरे अंदर।
अगर उसके बाद मुझे नहीं देखना चाहते तो ठीक, मैं वादा करती हूं कि उसके बाद कभी तुम्हें जहमत ना दूं। सिर्फ इल्तिजा करती हूं कि मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी जिंदगी अजाब झेला है, सुकून की मौत मरना चाहती हूं।